दूध एक शिशु के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है, पर आज उसी माँ के दूध में 800% से भी अधिक मात्रा में एंडोसल्फान जैसे विषैले तत्व पाए जा रहे हैं। क्या कारण है कि आज अमृत तुल्य माँ का दूध भी विषैला हो गया है? कारण है हमारा भोजन। ये सभी उन रासायनिक कीटनाशकों का ही असर है जिसका प्रयोग फसलों पर किया जाता है। जरा सोचिए, जब एक कीटनाशक के डिब्बे से भी उसकी गंध एक साल तक नहीं जाती, तो जो अन्न हम खा रहे हैं उसमें इस जहर की कितनी मात्रा होगी? हमारे भोजन में कीड़े मारने का वही जहर मौजूद है जो कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा जैसी घातक बीमारियों का मुख्य कारण तथा प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार है। जाने अनजाने में अन्नदाता कहलाने वाला किसान इस महापाप का भागीदार बनता जा रहा है। आदिकाल से इंसान खेती करता आ रहा है, पर उसे कभी रासायनिक कीटनाशक और कृत्रिम खादों की आवश्यकता नहीं पड़ी। खतरनाक जहर का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल अन्न विषैला बन रहा है, अपितु करोड़ों मित्र कीटक खत्म हो रहे हैं तथा अरबों हेक्टेयर भूमि बंजर हो रही है। और इससे होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। वहीं महंगे बीज, महंगी खाद, महंगे कीटनाशक आदि साधनों के चक्रव्यूह में किसान फंसता जा रहा है। गत 2 दशकों में कर्ज के बोझ ने 3 लाख से भी अधिक किसानों को आत्महत्या का मार्ग अपनाने पर मजबूर कर दिया है। क्या इस महंगी रासायनिक खेती का कोई दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प यही है कि हम फिर से अपनी परंपरागत कृषि की ओर रुख करें।
परंपरागत कृषि संस्कृति।
भारत ऋषि और कृषि परंपरा का देश है। हमारा गौरवशाली इतिहास इस बात का प्रमाण है कि कृषि को सदा से ही एक विशेष स्थान दिया गया है। शायद इसीलिए हमारे अधिकांश त्योहार जैसे मकर संक्रांति, होली, दिवाली, बैसाखी, ओणम, पोंगल आदि कृषि से संबंध रखते हैं। हमारे पूर्वज समय और मर्यादा का ध्यान रखते हुए फसलों को उगाते थे। हमारी कृषि संस्कृति में किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर तथा पांचों तत्वों के प्रति श्रेष्ठ भावना रखकर खेती करता था। किसान धरती माँ को नमन कर खेत में प्रवेश करता था और भूमि, बीज, हल सभी को पूजा कर उपयोग में लेता था। हवन कर प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध बनाता था। इससे किसान के अंदर महत परोपकार, प्रेम, पवित्रता जैसे जीवन मूल्यों का सीधा असर उसके द्वारा उगाए गए अन्न में देखने को मिलता था। इस कृषि पद्धति में लागत ना के बराबर थी। वे अपने ही संसाधन जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, जीव पदार्थों एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर सेंद्रिय गर्भ बनाए रखते थे। घर का बीज ही उपयोग में लिया जाता था। विविध प्रकार के उत्तम किस्मों के बीज से उत्तम पैदावार होती थी। पंछियों का आवाहन करके कीट प्रबंधन किया जाता था। साथ ही मेड़ों पर विभिन्न वृक्ष लगाकर सूक्ष्म पर्यावरण को बनाए रखता था। इन सब के साथ वे मिश्रित खेती में नव धान्य उगाते थे तथा फसल चक्र अपनाते थे। इस तरह किसान सात्विक अन्न उपजाकर खुशहाल था। अब फिर से हमें इन परंपरागत पद्धतियों पर लौटना होगा। इसमें ही किसान, पर्यावरण और हम सभी मनुष्यों का कल्याण समाया हुआ है।
शाश्वत योगी खेती।
परंपरागत कृषि पद्धतियों के साथ भारत के प्राचीन राजयोग ध्यान के समावेश को ही शाश्वत यौगिक खेती कहा जाता है। सकारात्मक चिंतन अर्थात राजयोग ध्यान के माध्यम से कृषि करने से ये निष्कर्ष निकला है कि योगाभ्यास एवं पवित्र भावनाओं की भाषा और प्रभाव पौधे, प्रकृति, जीवाणु, प्राणी जगत, वनस्पति आदि भी पहचानते हैं। उसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार, गुणवत्ता और सबसे अधिक तो उत्पादन खर्च में आकर्षक कमी आती है। गीता के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णित है,
गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पौष्णामि चौषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः।
अर्थात जब धरती में परमात्म शक्ति का समावेश होता है, उस शक्ति का ओज समस्त जीव राशि धारण करती है। फलस्वरूप सभी फसलें अमृत रस से संपन्न रसात्मक बन जाती हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी उद्दालक ऋषि आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही ऋग्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद, पद्म पुराण और मनुस्मृति सहित अन्य ग्रंथों में भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं। इससे ये बात स्पष्ट है कि परमात्म शक्ति और हमारी भावनाओं का फसलों पर गहरा असर होता है। सारा संसार एक विशेष ऊर्जा के माध्यम से चलायमान है, जिसे हम प्राण ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। ये ही वो परमात्म ऊर्जा है जिससे सभी जीव जंतुओं, वनस्पति आदि में जीवन का संचार होता है। राजयोग एक सरल ध्यान साधना है जिसके माध्यम से हम परम शक्ति के स्रोत परमात्मा से इस प्राण ऊर्जा को स्वयं में संचित कर सकते हैं तथा प्रकृति को प्रदान कर सकते हैं। हमारे संकल्पों का प्रकृति पर गहरा असर होता है, इसे कई वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक यूरी गेलर ने अपने एक प्रदर्शन में मूली के बीज को हथेली पर रखकर मात्र संकल्प शक्ति से अंकुरित कर दिखाया था, जबकि उसी बीज को खेत में अंकुरित करने के लिए कुछ दिन का समय लगता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने शोध के माध्यम से ये सिद्ध किया था कि पौधे मनुष्य के विचारों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, तथा जापान के वैज्ञानिक इमांटो मसारू ने जल के ऊपर किए अपने प्रयोग से ये सिद्ध किया है कि हमारे संकल्पों के प्रभाव से जल की संरचना में बड़ा बदलाव आता है। पानी के ग्लास पर अच्छे और बुरे शब्दों को लिखने तथा उन्हें वैसी ही भावना देने मात्र से ही उस जल की बूंदों के क्रिस्टल के आकार की बनावट बदल जाती है। यही सिद्धांत शाश्वत यौगिक खेती का मुख्य आधार है। गत कुछ दशकों से ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए किसानों ने अपने खेतों में योगाभ्यास की इस पद्धति को अपनाया है, जिससे उन्हें कृषि में काफी लाभ मिला। इससे उनका इस नूतन कृषि पद्धति में विश्वास बढ़ा है।
पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियां लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल से उत्पादन मिलता है उससे ज्यादा उत्पादन आज हम इस योगी खेती के माध्यम से ले रहे हैं। क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरिक वैल्यूज की मात्रा 2-5% तक बढ़ गई है और इसी के साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ रही है, इसको ऑर्गेनिक कर्व कहते हैं, वो बढ़ रहा है।
जो DWR के डॉक्टर सुभाष गिल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम ये सारा डाटा हम लेंगे, आपने सिर्फ योग करना। तो उन्होंने हमारे खेत में आके, करनाल से 18 किलोमीटर पड़ता है, तो खेत में 4 प्लाट बनाए। एक प्लाट बनाया ना कंट्रोल, जिसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या कुछ भी जैविक खाद या भगवान की याद कुछ भी नहीं। दूसरा प्लाट बनाया उन्होंने रासायनिक का, जैसे आम सारी दुनिया करती है उसमें केमिकल भी, फर्टिलाइजर भी, स्प्रे भी, सब कुछ। तीसरा प्लाट बनाया उन्होंने जैविक का, जिसमें भाई गोबर की खाद या देसी गाय के गौमूत्र से जो भी होता है वो प्लाट बनाया। और चौथा प्लाट बनाया उन्होंने, भाई चीज तो सभी सेम रहेंगी, एक दिन भाई एक दिन पानी, एक जैसा बीज, एक जैसा समय, एक जैसे काम करने वाले, लेकिन ये चौथा बनाया उन्होंने जैविक प्लस यौगिक। यौगिक माना के परमात्मा की याद में खेती करना। तो उसमें रिजल्ट ये हुआ कि जो केमिकल का फसल निकली उससे भी ज्यादा इसमें यौगिक खेती की निकली, और जो जैविक की और यौगिक की खेती थी बिल्कुल एक दिन एक बराबर, खाद भी बीज भी वो जैविक से वो देखने में भी अच्छी लग रही थी, उससे ज्यादा निकली। और जब उनने DWR में साइंटिस्टों ने लैब में जाके उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, उसका सब एनालिसिस करके देखा, तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें पौष्टिकता और गुणवत्ता बहुत बढ़िया है जो प्लाट किया था।
यौगिक खेती के बारे में सारी बातें सुनने के बाद वहाँ के जो जोनल ऑफिसर थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे कभी हो सकता है क्या कि सिर्फ हम मन से शुभ संकल्प इन पेड़ पौधों के ऊपर डालें और अच्छा उत्पादन हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि हमने ये करके देखा है, तो बोले कि अच्छा ठीक है, क्या हम आप हमारे प्लॉट पे आकर हमको ये करके दिखा सकते हैं। हमने वो प्लॉट देखा और फिर दूसरे दिन हमारा जो मेडिटेशन जिनको आता है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स वहां पर ले गए और उनको इस खेती के बारे में जानकारी दी। उस प्लॉट के साथ अच्छी अच्छी बातें, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग और बहुत अच्छे संकल्प उस खेती को हम देते थे। तो पूरी जब वो खेती तैयार हो गई, जब काटने का टाइम आया तो 15 दिन पहले वो जो जोनल ऑफिसर थे तो बोलने लगे कि चलो हम देखते हैं कैसे पूरी खेती बनी है। तो पूरे 4,000 स्क्वायर मीटर में हम दोनों भी घूमे वहां पर, और इस प्लॉट के पास आने के बाद वो बोले कि देखो आपकी खेती कैसे दिखती है। तो हमने देखा कि सचमुच इस खेती में थोड़ा सा उत्पादन कम दिखाई दे रहा था और उनके पूरे प्लॉट के ऊपर ज्यादा धान दिखाई दे रहा था। लेकिन 15 दिन के बाद जब ये खेती कटी और जब उन्होंने उसका वजन किया, तो उन्होंने ये पाया कि उनके पूरे खेती में 1 स्क्वायर मीटर में उनको मिला 500 ग्राम और इस प्लॉट के ऊपर, ब्रह्मा कुमारी के प्लॉट के ऊपर, उनको मिला 700 ग्राम।
अप्रैल के आखिर महीने हफ्ते के अंदर हमने बीज को संस्कारित करके 2 एकड़ के अंदर ये प्रयोग शुरू किया। तब से लेकर अभी तक हमने कोई भी कीटनाशक इसमें स्प्रे नहीं किया और संपूर्ण तरीके से जो है ना, हम इसका ETL लेवल चेक करते रहे, जो कि आज तक भी क्रॉस नहीं हुआ। व्हाइट फ्लाई, जेसिड्स और थ्रिप्स, सब चीज बिल्कुल कंट्रोल में है और संपूर्ण तरीके से जो है ना, हमारा खेती का ये प्रयोग सफल हो रहा है। आज तरह तरह के डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे पास आते हैं, सभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे विजिट किया और सभी ने ये देखा कि ये पेस्टिसाइड के बिना भी खेती संपूर्ण रूप से संभव है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर पवन कुमार यहाँ आए और उन्होंने काफी खुशी जाहिर करी कि बेनिफिशियल इंसेक्ट को कैसे हमने सहेजा हुआ है और किस तरह से जो है ना, नेचुरल इकोसिस्टम में कॉटन की फसल कितने बेहतर तरीके से की जा सकती है। सभी के व्यूज बहुत पॉजिटिव थे। CICR से डॉक्टर ऋषि शर्मा का नित यहाँ आना जाना लगा रहता है और उनका यही कहना है कि किसान आज भ्रम में है कि पेस्टिसाइड के बिना खेती नहीं हो सकती, परंतु ये इस प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना पेस्टिसाइड के खेती बहुत अच्छे तरीके से संभव है। और आसपास आप देख सकते हैं कि जहां भी पेस्टिसाइड का स्प्रे हुआ है वहां इतना पेस्ट कंट्रोल में नहीं है जितना कि हमारे खेत में है। हमेशा मैं जब भी खेत में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं हमारे, ये पौधे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। एक खास रिश्ता मेरा इनके साथ है, एक बातचीत है।
संकल्प करते हैं कि फसल इतना अच्छा आ रहा है, उसकी हाइट है, उसके तेज है। अभी 7 बरस हो गए, हमारी हर फसल में हमें सफलता मिल रही है। हमारे जो भी सब्जियां या हो, कोई हमारा प्रोडक्शन हो, हमारे बेचने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो घर मिलते हैं वो देखने में इतना तेज होता है कि वो देख के ही सब खुश होते हैं। वो बाजार में जाना नहीं पड़ता, वो वहां से ले जाते हैं। मार्केट में जाना पड़ता है तो भी 10-15 मिनट में सब सब्जियां खलास होती है। वो रहा देखते हैं कब आया, वो सब्जियां कैसे मिली।
वहाँ टोंक से 30 किलोमीटर दूर एक देवड़ावास शाश्वत योगी खेती फार्म प्रोजेक्ट रूप में वहाँ किया जा रहा है और उसके 1 साल के परिणाम बहुत सुंदर आए हैं। पहले वहाँ रसायन खाद द्वारा, रसायन कीट औषधि द्वारा ये किया जा रही थी खेती, तो वहाँ पर हमने जब किया तो इसके बहुत सुंदर तरीके अनुभव हमें मिले। खास बात इसमें कम खर्चा है, अधिक उत्पादन है, पौष्टिक उत्पादन है। फल जहाँ हम बेचते हैं तो फल मंडी में सबसे ज़्यादा भाव हमारा जाता है और वो शाश्वत योगी खेती के नाम से फेमस हो गया है कि भई ये शाश्वत योगी खेती फार्म से आया है। जैसे यहाँ बगीचा है फलों का, तो वो गत साल उनका जो उत्पादन था खर्चा निकालने के बाद में वो 15,000 का था, लेकिन इस साल जब हमने इस विधि से, इस युक्ति से और संकल्प की शक्ति द्वारा उसको खेत को तैयार किया और फल उत्पादन उसका रहा 1,82,000 का।
और पूरी खेती में एकदम परिवर्तन आया और उसका प्रॉफिट जब लगा, जब फसलें आती थी न इतना दवाई का न कोई खाद का। हमने एक बार तरबूज लगाया तो तरबूज हमने 5 एकड़ में किया, 5 एकड़ में तरबूज का पिछले 2014 में उसका जब हमने खेत पर फसल पे लगाया 5 एकड़ में, जब उसमें फल आया तो फल इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट फल लगा और बड़े बड़े साइज के। हमने सीड जो लगाया था, कंपनी वाले ने बोला कि इसका जो लार्ज साइज होगा वो 4 किलो का होगा तरबूज का, वाटरमेलन का, लेकिन जब अपने वो खेत जब निकला तो हाईएस्ट साइज था 15 किलो का तरबूज।
जो प्लांटेशन हमने यहाँ शुरू किया तो प्लांटेशन करने के 20-25 दिन के बाद इन केलों के जड़ों में रुई और हुंडी नामक कीड़ों का प्रादुर्भाव शुरू हुआ। कुछ पौधे मरने शुरू हो गए। जो देखने के लिए आते थे उनका कहना था कि इस तरह से योग में ये केले नहीं आएंगे, आपका प्रयोग कितना सफल होगा ये मालूम नहीं लगता, तो इससे अच्छा है यहाँ पर जो रासायनिक केमिकल थिनिक नामक एक जहरीला जो औषध है उसको अप्लाई करो। लेकिन हमें यकीन नहीं आया, तो उसके बजाय, उसको सप्लाई करने के बजाय हमने प्रतिदिन योग का प्रयोग शुरू किया। सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। कुछ दिनों के बाद वो सब कीड़े गायब होते गए। किसी प्रकार का रासायनिक प्रयोग नहीं किया और आज हम यहाँ पर देख रहे हैं इतनी अच्छी तरीके से ये फसल उगी है, उसका प्रयोग लगता है कि राजयोग का ही है।
शाश्वत योगी खेती, विज्ञान की कसौटी पर।
इस अनोखी पद्धति को विज्ञान की कसौटी पर प्रमाणित करने हेतु कई कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में शोध किए जा चुके हैं जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के किसान कुमार पवार द्वारा उगाए गए टमाटरों की तुलनात्मक जांच नेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड एनालिसिस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा की गई, जिसमें रासायनिक पद्धति से उगाए टमाटरों से शाश्वत यौगिक खेती के टमाटरों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और कैलोरी की मात्रा अधिक पाई गई, वहीं फैट की मात्रा में कमी देखी गई। साथ ही प्रति एकड़ लागत, फसल की उपज और मुनाफा देखा जाए तो भी शाश्वत यौगिक खेती किफायती और फायदेमंद साबित हुई। करनाल स्थित डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष गिल द्वारा गेहूं और चावल की खेती में शाश्वत यौगिक खेती का प्रयोग 2011-12 से स्थानीय किसान ज्ञान सिंह जी के खेत में किया जा रहा है। उन्होंने पाया कि इससे न केवल उत्पादन बेहतर हो रहा है बल्कि एक स्वस्थ, शुद्ध और टिकाऊ वातावरण भी बन रहा है। गुजरात के सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय ने पाया कि शाश्वत यौगिक खेती से बीजों के अंकुरण में 7% की वृद्धि हुई तथा मूंगफली में आयरन और जिंक की और गेहूं में जिंक और कॉपर की मात्रा में वृद्धि पाई गई। साथ ही शाश्वत यौगिक खेती वाले प्लॉट की भूमि में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक पाई गई। उत्तराखंड के गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी ने पाया कि राजयोग से उपचारित बीजों में अन्य तकनीकों से उपचारित बीजों के मुकाबले जड़ों की लंबाई, तनों की लंबाई, ग्रोथ विगर इंडेक्स, अल्फा एमिलेज एंजाइम एक्टिविटी और डीहाइड्रोजनाइज एंजाइम एक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। इनके अलावा महाराष्ट्र के परभनी स्थित मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र के अमरावती स्थित श्री शिवाजी कृषि विद्यापीठ, राजस्थान के टोंक स्थित वनस्थली कृषि विज्ञान केंद्र तथा अन्य संस्थाओं ने भी विभिन्न प्रयोगों से इस बात को प्रमाणित किया है कि रासायनिक कृषि के मुकाबले शाश्वत यौगिक खेती कई पहलुओं में अधिक कारगर और लाभकारी है।
शाश्वत यौगिक खेती करने की विधि।
आइए अब हम संक्षिप्त में देखते हैं कि किस प्रकार से हम शाश्वत यौगिक खेती पद्धति से खेती कर सकते हैं।
भूमि संस्कार।
भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु पंचगव्य, जीवामृत, गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि का उपयोग करें। साथ ही ध्यान में बैठकर परमात्म शक्तियों को जमीन पर केंद्रित करें तथा संकल्प करें कि भूमि शक्तिशाली हो रही है तथा उसमें जीवाणु सक्रिय हो रहे हैं।
बीज संस्कार।
बुआई से पूर्व बीजों को परमात्म शक्ति देते हुए संकल्प करें कि बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ रही है तथा इन बीजों से निरोगी और शक्तिशाली पौधों की उत्पत्ति होगी। इसके बाद इन बीजों को बीजामृत से उपचारित करके जमीन में बोएं।
जल संस्कार।
जब भी खेत में पानी छोड़ें, तब ध्यान अभ्यास में संकल्प करें कि पानी की हरेक बूंद ऊर्जावान हो गई है तथा फसल की बढ़त में सहयोग दे रही है।
फसल संरक्षण।
फसल संरक्षण के लिए दशपर्णी अर्क और नीम अर्क जैसी प्राकृतिक दवाइयों का उपयोग करें तथा योगाभ्यास में यही श्रेष्ठ संकल्प करें कि परमात्म ऊर्जा का शक्तिशाली कवच फसल को सुरक्षित कर रहा है जिससे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट समीप नहीं आ रहे हैं तथा फसल शक्तिशाली बन रही है।
कर्म योग।
दिन भर खेतों में कार्य करते समय मन में अच्छे विचारों को प्रवाहित करें तथा पौधों के साथ प्रेम से बातें करें। इसी के साथ प्रभात के समय तथा संध्या काल के समय विशेष ध्यान अभ्यास करें तथा फसल को प्राण ऊर्जा प्रवाहित करते रहें।
आभार।
खेती से अनाज निकालने के पहले प्रकृति, जमीन और परमात्मा को धन्यवाद देकर आभार अवश्य व्यक्त करें, फिर पौधों की स्वीकृति लेकर फसल की कटाई करें। शाश्वत यौगिक खेती अपनाने वाले कृषकों ने न केवल कृषि में लाभ पाया है परंतु उन्हों के जीवन में चारित्रिक उत्थान भी हुआ है। जहां राजयोग के निरंतर अभ्यास से किसानों के जीवन में क्रोध हिंसा जैसे बुरे संस्कारों का ह्रास हुआ है, वहीं अनेक किसान जो शराब सिगरेट और जुए जैसे व्यसनों के अधीन थे आज वे निर्व्यसनी जीवन जी रहे हैं। साथ ही राजयोग से किसानों में आत्मविश्वास दृढ़ता और मनोबल जैसे नैतिक गुणों की भी बढ़ोतरी हुई है जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य देता है। इससे अनेक किसान परिवार एक सुखी जीवन जी रहे हैं। शाश्वत यौगिक खेती आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य मिशन बन चुका है। ये एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्था है जो पिछले 8 दशकों से मानवता की सेवा में निरंतर प्रयासरत है। संस्था द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 20 प्रभाग बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रभाग है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग। इस प्रभाग द्वारा ग्रामीण उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रम और परियोजनाएं निरंतर आयोजित किए जाते हैं। शाश्वत यौगिक खेती इनमें से एक है। अब ये मिशन भारतीय सीमा को पार कर विदेशों में भी अपनी जगह बना चुका है। इटली अमेरिका ग्रीस मॉरिशस नेपाल आदि देशों में भी किसान इस पद्धति का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं। किसानों के हित में किए जा रहे इस भागीरथ प्रयास में आपके भी सहयोग की उंगली अपेक्षित है। रासायनिक कृषि आज संपूर्ण पर्यावरण और मानव जाति के लिए अभिशाप बनती जा रही है। अतः किसान भाइयों, मानवता को और खतरे में मत डालो। आओ हम इन विषैले रसायनों से धरती को मुक्त करें, शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं और सात्विक अन्न उगाएं। शाश्वत यौगिक खेती को कोई भी किसान आसानी से कर सकता है। राजयोग ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सिखाया जाता है। आपका भी इस अनमोल विद्या को सीखने हेतु हार्दिक स्वागत है। ओम शांति।